नियम सार कारण कार्य नियम पुस्तक तीसरी लेक्चर नंबर 168। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आययाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहूणं नमि ऊणजिनं वीरं अनन्तवर्णानदं सणसहावं वोच्छामि नियमसारं केवली सुधकेवली भणिदम्। आचार्य श्री कुनकुन भगवान द्वारा रचित यह नियमसार नामक ग्रंथ है, उस पर पद्म प्रभ मलधारी देव जो मुनिराज हुए उन्होंने तात्पर्य वृत्ति टीका लिखी है, और इन पर गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के जो प्रवचन हुए हैं वह भी कारण कार्य नियम पुस्तक रूप से अपने हाथ में है। इस 7 पुस्तकों में से अपनी तीसरी पुस्तक चल रही है, और हम पृष्ठ संख्या 116 पर आ गए, 116। ये 90 नंबर का अभी श्लोक पढ़ने जा रहे हैं हम, वैसे पढ़ा था फिर दोबारा हम पढ़ते हैं, बीच में इतने दिन की गैप हो गई ना। तीसरा ही चल रहा है, ब्रह्मा की पुस्तक होगी अंदर। हाँ देखिए हम पढ़ते हैं ये। समिति संहतितः फलमुत्तमं सपदि याति मुनिः परमार्थतः न च मनोवचसामपि गोचरं किमपि केवल सौख्य सुधामयम्। उसका श्लोकार्थ देखते हैं। यहाँ तो व्यवहार चरित्र की बात अपनी चल रही थी, मुनियों के जो आचार होते हैं उनकी जो समितियां वो तो बाह्य उसको कहते हैं, परंतु निश्चय से समिति कहो व्रत कहो सब जो अंतरंग में स्थिरता है उसी को कहते हैं, और बाह्य में जो समिति आदि जो प्रवृत्ति रूप है उसको उपचार से कहने में आता है। इन्हें सच्ची समिति क्या है तो अंतरंग में स्थिरता। तो समिति नी संगति द्वारा खरेखर मुनि मन ने वाणी ने पन अगोचर ने उसके द्वारा ख्याल में नहीं आ सकता, मन के द्वारा हम उसके इमेजिन नहीं कर सकते, वाणी के द्वारा कह नहीं सकते कि मन ने वाणी ने पन अगोचर यानी मन थी अचिंत्य यानी उसको हम चिंतवन ने कल्पना नहीं कर सकते, यानी वाणी थी अकथ्य वाणी से कह नहीं सकते। ये किसका वर्णन चल रहा है तो अतीन्द्रिय सुख का। एवं कोई केवल सुखामृतमय उत्तम फल शीघ्र पामे छे। केवल सुखामृत यानी वो तो अनंत सुख की प्राप्ति होती है किसके द्वारा, ये समिति के द्वारा। ये समिति कौन सी, अंतरंग में स्थिरता, मुनि योग्य जो स्थिरता है वीतरागता है उसकी बात है। अभी इसका नीचे जो प्रवचन है नीचे से तीसरी लाइन वहां से हम पढ़ेंगे। आहा हा शू कहे छे के समिति नी संगति द्वारा, भाषा जुओ, जेने आत्मा मा वीतरागता नी पर्याय साथे संगति करी छे, जेने राग नो संग छोड़ी दीदो छे। देखो आत्मा का अनुभव कैसे होगा, पर्याय में राग है, अभी जो मिथ्या दृष्टि है उसके मोह राग द्वेष सभी है, परंतु वो उसको अनुभव किस पद्धति से होगा। आगम के द्वारा तो सभी तत्वों का तो निर्णय करना ही करना है, परंतु अपने में ही उठने वाले जो राग द्वेष के परिणाम है जिसको हम राग भाव कहेंगे विकार कहेंगे, उससे मैं ज्ञायक जुदा हूँ इस तरह वो राग से भेद करना है, ये सबसे महत्व की बात है। तो शरीर से भेद विज्ञान तो क्या अन्यमति भी कर देते ना कि शरीर से जीव जुदा है, जीव यानी मरता है ना कि अन्यत्र चला जाता है वहां जन्म लेता है, ऐसा तो सब कहते हैं, परंतु राग के रहते हुए उससे मैं जुदा हूँ, ये मुख्य बात है। उसी को कहते तप। यानी अभी तो मुनियों के तो बहुत अल्प राग, केवल संज्वलन राग बाकी है, उससे भी जुदा अपना अनुभव करके उसी में अपने स्वभाव में स्थिर रहते हैं। तो कहते उसी को समिति कहा, और उसी के द्वारा केवल ज्ञान की प्राप्ति होने वाली है। क्योंकि जब मुनियों की बात क्यों उठाई, क्योंकि मुनियों का छठा सातवां गुणस्थान है। छठा गुणस्थान शुभोपयोग का है, सातवां शुद्धोपयोग का है। अब ऐसे जम जाएंगे अंदर के शुद्धोपयोग से बाहर ही नहीं आएंगे, तो श्रेणी चढ़ के केवल ज्ञान प्राप्त करेंगे। इसलिए समिति के द्वारा ही उनको केवल सुखामृत की प्राप्ति होती है, ऐसा कह दिया उन्होंने। देखो आगे बढ़ते हैं, लास्ट लाइन। समिति नी संगति द्वारा खरेखर मुनि आवा संतो केवड़ी ना तो विरह पड़या। अने अभी पंचम काल में यहाँ केवली है ही नहीं है, पण एवा मुनियोना विरह पड़या। अने अभी ऐसे मुनिराज भी नहीं रहे, जो कुनकुंदाचार्य, अमृतचंद्राचार्य, पद्म प्रबंधधारी देव, जो इतने सारे मुनि हो गए, भावलिंगी संत, अभी उनका भी विरह है। परंतु एक बात ऐसी भाग्य की हमारे, उनके जो रचना है शास्त्र की, वो हमारे लिए रह गई है, जो उपलब्ध है आज के जमाने में। और कितने काल तक उसका अर्थ भी बताने वाले बहुत सारे नहीं थे, जो ज्ञानी है वही उसमें से अर्थ निकाल सकता है। तो हमारे काल में ये जो कांजी स्वामी हो गए, उन्होंने उसमें से अर्थ निकाल कर हमको बता दिया। उन्होंने एक भी अक्षर अपनी ओर से नहीं डाला उसके अंदर, जो उन्होंने लिखा है उसी का अर्थ करके बता दिया है, और हम उसको अपने बुद्धि से परीक्षा कर सकते हैं। कहे छे के समिति नी संगति द्वारा, राग नो संग नहीं, निमित्त नो संग नहीं। हम कहे छे, देखो निमित्त होते हैं परंतु वो कार्य में कुछ नहीं करते, ये पहले हमको निर्णय करना है उसका। शुद्ध भगवान पवित्र आनंद एना संग द्वारा एनी संगति। मुमुक्षु कहते व्यवहार माथी निश्चय काढ़े छे, क्योंकि यहाँ व्यवहार अधिकार चल रहा है और उसमें से निश्चय की बात बता रहे हैं। व्यवहार का प्रयोजन ही है कि निश्चय को बतावे, व्यवहार को बताने के लिए व्यवहार नहीं होता है, उसमें से निश्चय का अगर हम आत्मसन्मुख हो जाए उसमें से, तो ही उसको कार्यकारी है, नहीं तो व्यवहार का भी कुछ फायदा नहीं है। जैसे उदाहरण मैंने वो पुस्तक में दिया था ना, कि बच्चे को बताया कि अंदर किचन में से नमक लिया, सॉल्ट, तो उसने पूछा नमक क्या होता है, तो नमक नमक होता है, तो कुछ नहीं समझा। फिर माँ ने क्या बताया, अंदर किचन में जा, सामने जो कुछ अलमारी है तो उसमें नीचे के पटिये पर बहुत सारी वो तो बर्नी रखी है कांच की, और उसमें सफेद सफेद दो तीन बर्नी में सफेद सफेद है, तो एक में जो सफेद है वो चखे देखो खारा है, दूसरा सफेद वो मीठा है, ये जो खारा है वो नमक है, तो वो तू ले आया। अब वो किचन में गया, वो अलमारी देखी, अलमारी में वो पटिया नीचे देखा, वो दरवाजा खोला, वो सब चक्के देखा। अब जब उसने नमक ढूंढ लिया, तो अभी बाकी वो अलमारी का, पटिया का, बाकी किसी का प्रयोजन नहीं रहा, अभी उसको तो मिल गया, परंतु वो मिलने के लिए सब कार्यकारी था। ऐसे ही व्यवहार जो कार्यकारी कब होता है, निश्चय को बताने के लिए। उत्तर कहते हाँ काढ़े छे त्यारे ओला ने गोटतू नहीं, क्या कहा, जो व्यवहार के पक्ष वाले हैं, व्यवहार के पक्ष है, उनको निश्चय व्यवहार की भी बात नहीं है। निश्चय और व्यवहार ये तो कथन होते हैं, कथन पद्धति है, मोक्ष मार्ग तो एक ही है, परंतु राग को व्यवहार मोक्ष मार्ग कहना ये उपचार है, उसको कह देते हैं तो उसने राग से ही मोक्ष होगा ये मान लिया है, शुभ राग करते करते हमको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसे उसने मान लिया, तो उसको गुस्सा आता है कि व्यवहार में से निश्चय निकालते हैं। उसने क्या मान के रखा है, ये जो मुनि दीक्षा ली है, ये जो मैं मुनि के आचार पाल रहा हूँ, इसी से मुझे मोक्ष हो जाएगा। यानी वहां तत्व विचार की कोई बात ही नहीं, मुख्यतः आत्मा के अनुभव की बात ही मुख्यतः सोचता नहीं। तो कहते ओला ने गोटतू नहीं, व्यवहार कहवाने हेतु शू छे, निश्चय छे एने छोड़ीने ठरवा माटे व्यवहार नो हेतु छे, मुनि तो मुक्त छे। પણ વિકલ્પ છે એટલે અસ્થિરતા છે. અને એ જો વિકલ્પ હૈ ઉસકો યહાં વ્યવહાર કહે દિયા, ઉસકો છોડ કર અંદર મેં સ્થિરતા કરની, ઉસકો પકડ કે રખને કે લિયે ઉસકા વર્ણન શાસ્ત્ર મેં નહીં આતા. એને છોડીને સ્થિરતામાં જા. દેખો જો નિમિત્ત હોતે હૈ, યો જો વ્યવહાર એને સહચર હોતે હૈ, ઉસકા તો શાસ્ત્ર મેં કથન આતા હૈ બહોત સારા, પરંતુ ઉસમે રુકને કે લિયે વો નહીં આતા હૈ. હા, તો વો તો નિશ્ચય કો અંગીકાર કરને કે લિયે ઉસકા વર્ણન આતા હૈ એને. હા, એ માટે વ્યવહાર જણાવે છે. એ વ્યવહાર આવે એ જણાવે તો ખરા ને, આવે અને વો પર્યાય મેં વો રાગ ભાવ હૈ. મુનિ યોગ્ય રાગ જો હૈ વો પર્યાય મેં હૈ. 28 મૂળગુણ પાલન કરને કા રાગ મુનિ દશા મેં આતા હૈ, તો એ રાગ પર્યાય મેં હૈ, તો ઉસકા કથન ભી કિયા જાયેગા, ક્યુંકિ વો જ્ઞાન કા ગેય હૈ. શ્રદ્ધાન મેં વો મેરે મેં હૈ એસા મુનિરાજ નહીં સ્વીકાર કરે. શ્રદ્ધાન કેવલ સ્વ કો સ્વીકાર કરતા હૈ, ઓર જ્ઞાન સ્વ કો ભી જાનેગા, પર કો ભી જાયેગા, પર્યાય કો ભી જાનેગા, નિમિત્ત કો ભી જાનેગા, અરે પૂરે વિશ્વ કો જાનેગા. જ્ઞાન કા વિષય તો સબ કુછ હૈ, શ્રદ્ધાન કા વિષય માત્ર સ્વ. ઉસ સ્વ મેં પર્યાય કો ભી સ્થાન નહીં હૈ. ઇસ તરહ સે વો જો કાયમ રહેને વાલા જો ધ્રુવ સ્વભાવ ભાવ હૈ, ઉસમે સ્વપના સ્થાપિત કરના હૈ. તો કહેતે એ વ્યવહાર આવે એ જણાવે તો ખરા ને, જ્ઞાન તો કરાવે ને. જાણે લો પ્રયોજનવાન છે, એ જાણા હુઆ પ્રયોજનવાન. જાણે લો પ્રયોજનવાન ક્યુ કહેતે હૈ, એ તો ક્યુંકિ પર્યાય કહા, એને અપની ભૂમિકા હૈ, ઉસકો તો પહેચાનેંગે કે નહીં પહેચાનેંગે. જૈસે સમય દર્શન હુઆ, અભી ભી પર્યાય મેં ક્રોધ માન માયા લોભ હૈ ઉસકે, ક્યુંકિ અભી તીન કષાય ચોકડી હૈ. અબ જો મુનિરાજ હો ગયે તો ઉનકે તો એક સંજવલન કષાય હૈ, તો ઉસકે ઉદય મેં શાસ્ત્ર બના લિખને કા યા પઢાને કા ભગવાન કે વંદના કરને કા યે શુભ ભાવ હૈ, તો ઉસ ભાવ કો વો જાનેંગે કે નહીં જાનેંગે. જ્ઞાન મેં તો જાનેંગે, પરંતુ શ્રદ્ધાન મેં વો મેં હું મેરા હૈ એસા સ્વીકાર નહીં કરેંગે. એ દોનો કા હી બેલેન્સ રહેતા હૈ. સમિતિની સંગતિ દ્વારા ઓલા આમાંથી વ્યવહાર સમિતિ લઈ લે, એઈ એને જો જીસકો કહી કે આચાર વિચાર, એની જો કેવલ વો તો બાહ્ય વ્રતાદિ પાલને કે જો પક્ષપાત વાલે હૈ, જીસકો વ્યવહાર કે પક્ષ કે વાત કહી, તો ઉસમે સે યે જો કહા ના સમિતિની સંગતિ દ્વારા. કૌન સી સમિતિ? વો બાહ્ય જો સમિતિ પાલ રહે હૈ. કૌન સી સમિતિ માલુમ હૈ? આદાન નિક્ષે પ્રતિષ્ઠાપન સમિતિ, આપને સુને હોગે યે નામ. હા, તો કહેતે કે જો વો વ્યવહાર કે પક્ષ વાલે ઇસમે સે વો વ્યવહાર સમિતિ કી વાત ઉઠાતે હૈ. અહીં તો સમિતિની સંગતિ અંદર વિતરાગ પરિણતિનો પરિચય એની સંગતિ, અને વિતરાગ જો પરિણતિ હૈ ઉસકો યહાં પર સમિતિ કહા હૈ, ઓર ઉસકી સંગતિ. એ વાતને પણ સાંભળતા એને પ્રમોદ આવે એવી ચીજ છે આ તો. સમિતિની સંગતિ દ્વારા પદ્મપ્રભ મલધારી દેવે, એ દેવે પણ વ્યવહારના સ્થાનમાં નિશ્ચય વસ્તુ આદરણીય તો એ જ છે. વ્યવહાર આવે છે એ જાણવા લાયક છે. જીસ ભૂમિકા મેં હૈ, સમય દર્શન હોને પર ભી કોઈ ચોથે વાલા હૈ, કોઈ પાંચવે વાલા હૈ, છઠ્ઠે સાતવે વાલા હૈ, તો ભૂમિકા કે યોગ્ય અને જીસ ગુણસ્થાન મેં હૈ ઉસ જાતિ કે ઉનકે ઉસ વહાં ભાવ હોગે કે નહીં. રાગ તો અભી વિદ્યમાન હૈ. ચોથે વાલે કો તીન કષાય ચોકડી બાકી હૈ, પાંચવે વાલે કો દો બાકી હૈ, છઠ્ઠે સાતવે મેં એક કષાય ચોકડી હૈ અભી સંજવલન વાલી. તો કહેતે વ્યવહાર આવે છે, કરે છે એસા નહીં કહા, આવે છે એ જાણવા લાયક છે. અને વો જ્ઞાન કા ગેય હૈ. આવું હોય છે વ્યવહાર, જ્યારે વિકલ્પ હોય છે ત્યારે હોય છે, બસ એટલું. અને વિકલ્પ કી દશા મેં એસા વ્યવહાર પાયા જાતા હૈ. યે મુનિ દશા કા એસા હી સ્વરૂપ હૈ. બાહ્ય મેં એસા સ્વરૂપ હૈ, અંતરંગ મેં તો વો તો વિતરાગી પરિણતિ ચલ રહી હૈ. ખરેખર મુનિ મન વાણીને પણ અગોચર, મનના વિકલ્પને અને વાણીથી અગમ્ય એવી ચીજ, એને મનથી અચિંત્ય અને વાણીથી અકથ્ય, એમ બે અર્થ કર્યા. મનથી તો અચિંત્ય છે, મનથી જણાય એવી ચીજ નથી, અને હમ મન કે દ્વારા ઉસકો ઇમેજિન કર સકતે તો એ વાત હૈ નહીં. વાણીથી અકથ્ય છે. શું કહે છે એને? પુણ્ય પાપના રાગ રહિત વિતરાગ પરિણતિ. એ વિતરાગ પરિણતિને શું કહેવું? દાખલો આપો કંઈક કહે છે. લ્યો દાખલો શું પણ આમાં? क्या कहते हैं, उसको किसी की उपमा नहीं दे सकते। दाखला नहीं, उसको किसी की उपमा देकर वो नहीं समझा सकते कि इसमें जैसा सुख है वैसा इसमें सुख है। वो तो अतुलनीय है, अन्य किसी के साथ उसकी तुलना नहीं होती, अनुपम कहते उसको। वस्तु वितरांग राग थी छोटी ने एमा एकाग्र थऊं एनु नाम वैराग्य परिणति छे। राग थी छूटी ने वो राग का लक्ष्य पहले छूटेगा और फिर अंदर एकाग्र होने से वो नया उत्पन्न होने वाली पर्याय राग रहित उत्पन्न होगी। पूर्ण वितराग तो नहीं होगा अभी, अभी तो मुनि दशा है ना। अंतर छठे में जो शुभ राग था अभी सातवें में गया शुद्ध भाव, परंतु वो अबुद्धि पूर्वक का राग वहां पर भी है। परंतु राग को छोड़ दिया, उसका विकल्प छोड़ दिया, उसका लक्ष्य छोड़ दिया, इसको कहते राग को छोड़ा। और यहाँ हमें फिर उपदेश मिलता है ना कि राग को छोड़ो और आत्मा को ग्रहण करो। तो हम राग को छोड़ने पहले में पहले क्या करना चाहते हैं, क्रोध कम करना चाहते हैं, है ना। तो क्रोध कम करने के लिए लक्ष्य किसका किया, क्रोध का। तो वो कब कम होगा, कभी नहीं होगा। यानी भले हमें लगेगा नहीं नहीं अभी तो हम बहुत शांत हुए, परंतु अनंतानुबंधी की जाति नहीं बदलेगी। तो वो कैसे बदलेगी, तो अपना अनुभव होने पर ही होगी। यानी राग रहते हुए राग का लक्ष्य छोड़कर, वो मेरे स्वरूप में नहीं है ऐसा उसको नकार करके स्वरूप में जब स्थिर होगे, तो क्योंकि एक एक समय की पर्याय उत्पन्न होती रहती है, तो नई जो पर्याय उत्पन्न होगी, यहाँ स्वरूप में एकाग्र होने से आत्मा का अनुभव हो जाएगा और नई पर्याय होगी, उसमें अभी अनंतानुबंधी जाति वाले कषाय नहीं उत्पन्न होगी। इसको कहते राग को छोड़ना। एनु नाम मन थी अचिंत्य ने वाणी थी अकथ्य, एवं कोई एम के अलौकिक केवल सुखामृतमय आवी रमणता द्वारा, यानी आत्मा में ऐसे एकाग्रता करने पर भगवान तने केवल सुखामृत एकलो सुख ने अमृत नो सागर एवं उत्तम फल तू पामीश, ते पण शीघ्र पामे छे। यानी बहुत दो चार भव ऐसे ने शीघ्र पामे छे, शीघ्र ने वो बिल्कुल भले भी दो चार भव हो गए तो भी वो शीघ्र ही कहने में आएंगे। जल्दी पामे मां क्रमबद्ध क्या गयूं, तो कहते उसमें क्रमबद्ध आया कि नहीं, ऐसा ही होगा ना, जो ऐसा करेगा तो वो तो उसके क्रम में ऐसे ही पर्याय आने वाले ही है। एनो अर्थ के आवु होए एने अल्प काल मां क्रम मां एज मुक्ति थाय एम कहे छे। आवी दशा जेने अंदर होए, क्योंकि ये जो क्रम होता है वो पूर्व पर्याय के व्यय पूर्वक ही होता है, जिसको ये मोक्ष दशा जल्दी आएगी ऐसा कहते हैं। तो अभी पर्याय के क्रम में उसकी मुनि दशा आई है और वो अंतरंग में स्थिरता कर रहे हैं, तो इसकी अभी भविष्य की पर्याय भी इसके द्वारा हम निश्चित कह सकते हैं कि अल्पकाल में ये मोक्ष लेने वाले जीव है। एम कहे छे समझानु काय लास्ट पैराग्राफ, कोई केवल सुखामृतमय उत्तम फल ते पण सपदी सपदी छे ने भाषा तो घणी बधी आवी छे ओ शीघ्र पामे छे। आवी चारित्रनी सम्य दर्शन ज्ञान सहितनी रमणता, इसी को चारित्र कहते हैं, रमणता जो एने तो मुक्ति अल्पकाल मां प्राप्त थशे। संसार नो अल्पकाल मां अंत आवशे। समिति नी व्याख्या करता समिति नो भाव समिति नो प्रमोद अने एनु फल बतायुं। जो यानी वो समिति होते हुए तो उसमें प्रमोद है ही है, मुनि योग्य प्रचुर आनंद तो है ही है, उसके फल में भी अनंत सुख की प्राप्ति होने वाली, ये कह रहे। अभी तो सपदी का क्या सपदी नजर जल्दी शीघ्र यानी सपदी याति मुनि परमार्थता उत्तम फल शीघ्र पामे छे। अभी 66 नंबर की गाथा पढ़ेंगे। कालु समूह सन्ना रागत दोसाई असुह भावाणम परिहारो मनुगुप्ति व्यवहार नयेन परिकहियम। कालु समूह संज्ञा रागत द्वेषाद्य शुभ भावनाम परिहारो मनुगुप्ति व्यवहार नयेन परिकथिता। कालुष्य संज्ञा मोहरा द्वेष आदि अशुभना परिहारने मन गुप्ति चे भाखेल नय व्यवहार मा। ये संस्कृत की पहली लाइन है ना, शुभ भावनाम नहीं भावानाम होना चाहिए, अशुभ भावानाम राग द्वेषादि अशुभ भावानाम ऊपर है ना, अशुभ भावानम नीचे अन्वयार्थ में लिया, देखो कालुष्य मोह संज्ञा राग द्वेषादि अशुभ भावानाम व का वा करो, हाँ संस्कृत इसमें भी देख लेते हैं मगर वो ही होना चाहिए ना, भावानाम का कुछ अर्थ ही नहीं है भावानाम। छाष्ट है ना भावानाम, बरोबर भावानाम चाहिए
नीचे, तो है
नीचे बरोबर है। तो कहते अभी तो हमने पांच महावर देखे, पांच समिति की बात हो गई, अब गुप्ति की बात करें। गुप्ति कितनी होती मालूम है भैया आपको? तीन, कौन सी? मनोगुप्ति, काय गुप्ति। अभी ये मनोगुप्ति की बात यहाँ चल रही है। देखो अन्वयार्थ पढ़ते हैं, कालुष्य मोह संज्ञा राग द्वेषादि अशुभ भावानाम, उसका अर्थ है कलुषता मोह संज्ञा राग द्वेष वगैरह अशुभ भावों ना परिहार, यानी परिहार ने व्यवहार नये न व्यवहार नये थी मनोगुप्ति ही मनोगुप्ति परिकथिता कहेल छे, यानी व्यवहार नये से उसको मनोगुप्ति कहते हैं। टीका एक आंकड़ा कहाँ आया है? हाँ आ व्यवहार मनोगुप्ति ना स्वरूप नु कथन छे, अभी फुटनोट में जाएंगे। मुनि ने मुनित्वोचित, यानी मुनित्व के लिए उचित, मुनिपना के लिए जो उचित है, शुद्ध हाँ योग्य शुद्ध परिणति नी साथे वर्ततो, मुनि तो उनको कहते हैं जिनकी शुद्ध परिणति तीन कषाय के अनुदय पूर्वक जो चल रही, अभाव कहेंगे पर अनुदय कहना उचित है। तो कहते कि उसके साथ जो अभी राग बाकी है संज्वलन, और वहाँ जो राग है और वहाँ जो कुछ आचार वगैरह है उनके, वो तो हठ रहित है। मिथ्या दृष्टि कैसे व्रतादि पालता है, तो उसमें हट है कि ये मैं कर दिखाऊंगा, ये मेरा कार्य है, देखो मैंने किया, कर्ता बुद्धि है। ये समय दर्शन होने के बाद जितने भी कुछ श्रावक के योग्य मुनि के योग्य जो आचार होते हैं उसको कहेंगे वो हठ वगरनो, हठ वगरना। यहाँ लिखा है ना शुद्ध परिणति नी साथे वर्ततो, जे हठ वगरनो मन आश्रित वचन आश्रित के काय आश्रित शुभोपयोग तेने व्यवहार गुप्ति के हम आवे छे। शुभोपयोग को व्यवहार कहेंगे, और शुभ को छोड़कर अंतरंग में स्थिरता है उसको तो निश्चय कहेंगे। मन आश्रित शुभोपयोग यानी विकल्प, सविकल्प रूप जो है वहां पर आत्मा संबंधी है, अन्य दुनिया के विकल्प की बात नहीं, शुभ विकल्प की बात है यहाँ पर, वचन के द्वारा और काय के द्वारा, उसको व्यवहार से गुप्ति कहेंगे। कारण के शुभोपयोग मा मन वचन के काय साथे अशुभोपयोग रूप जोड़ान नथी, लिखा ना अशुभ के परिहार से, मन के द्वारा अशुभ का परिहार किया है ने क्या शुभ में जुड़ गया। शुद्ध परिणति न होए त्या शुभोपयोग हठ सहित होई छे, अक्षुद्ध परिणति नहीं है ना, वो पहला गुणस्थान वाला है, अब वो मुनि योग्य सारे आचार पाल रहा है तो उसको क्या कहेंगे, हठ सहित है। ते शुभोपयोग तो व्यवहार गुप्तिपण कहवातो नथी, तो उनका गुणस्थान कौन सा है जो हठ पहला, तो उनको संयम है कि नहीं है, और लोग मानेंगे उनको संयम नहीं कहेंगे तो, क्योंकि पाल रहे ना दिख रहा है ना, बाह्य में जो आचार पाल रहे हैं उसी को लोग संयम समझते हैं और उनको संयमी कहेंगे, और क्योंकि आप क्या अधिकार है आपके तो इतना भी नहीं पलता है, दिन में तो दो दो तीन तीन टाइम भोजन करते हैं और आप उनको असंयमी कहते हैं, हम नहीं कह रहे हैं और किसी व्यक्ति विशेष का यहाँ कोई निषेध नहीं है, ये तो आगम के अनुसार हमें चलना है। संयम किसको कहना है, क्योंकि उनके जो कुछ यम नियम पाल रहे हैं, हमने पढ़ा था उसको द्रव्य यम के नाम है, संयम नाम नहीं है। यम नियम है उनके जो कुछ व्रतादि का पालन कर रहे हैं तो बिल्कुल जैसे आगम में लिखा वैसा कर रहे, परंतु अभी शुद्ध परिणति नहीं है, यानी आत्मा का अनुभव नहीं है, तो वहां वो सो उसका कर्ता बुद्धि है उसके अंदर, क्योंकि अभी अनुभव नहीं है ने कर्ता बुद्धि पड़ी, भले सूक्ष्म है किसी के स्थूल है परंतु है, तो उनका नाम संयम ही नहीं कहेंगे, वो असंयम कहेंगे, उनका गुणस्थान पहला है। यहाँ लिखा है न शुद्ध परिणति न हो त्या शुभोपयोग हट सहित हो छे, ते शुभोपयोग तो व्यवहार गुप्तीपन के बातो नथी। कितने तो ऐसे हैं कि उनके तो शुभोपयोग और शरीर की क्रिया इसमें भी भेद नहीं कर पाते, यानी वो क्रिया को ही शुभ मान रहे हैं, भले वो क्रिया के पीछे परिणाम कैसे भी हो। जैसे दान देना ये शुभ है कि अशुभ है, वो तो क्रिया हो गई, परंतु दान देते समय कितने लोग मुझे देख रहे हैं, इसके में देने से मुझे कुछ समाज में लोग मानेंगे, हम मेरी बेटी अभी शादी योग्य है तो लोग कहेंगे नहीं ये कोई पैसे वाला है, तो ये क्या हो गया, अशुभ। ख्याल तो ये परिणाम जुदी बात है और कार्य क्रिया जुदी बात है, तीन तीन बातें होती है, एक तो ज्ञान, एक तो ये राग द्वेष के परिणाम यानी जिसको हम शुभ अशुभ भाव कहेंगे, और एक जड़ की क्रिया। इसमें हमके तीनों हो गए वहां पर, हमें उसका भेद समझना है कि ये क्या है, ये शुभ राग है, ये शुभ क्रिया है, या ये उसका संबंधी ज्ञान है, इतना तो भेद हम कर सकते उसके अंदर। अब यहाँ टीका पढ़ेंगे सेकंड लाइन, क्रोध मान माया ने लोभ नामना चार कषायोति क्षुब्ध थैलु चित्त। एक क्षुब्ध है ना, हम कहते क्षोभ है, मोह और क्षोभ जो कहते हैं ये क्षुब्ध होते हैं, ये चार जो परिणाम है उससे चित्त कैसा था, क्षुब्ध हो जाता है, आकुलित होता है, ते कलुषता छे, उसी को कलुषता कहा। दर्शन मोह ने चारित्र मोह वा बे भेदों ने लीधे मोह बे प्रकारे छे। अभी संज्ञा के कभी नाम सुने हैं, संज्ञा, संज्ञा क्या होती है, हाँ किसको कहना संज्ञा, किसको कहना, तीव्र वासना जिसको कहें, इच्छा, इसको कहेंगे संज्ञा, यानी वो उसके कारण कुछ चाहता है, क्या चाहता है, आहार संज्ञा में आहार आदि भोजन आदि संबंधी भी कथा सुनकर देखकर वगैरह भोजन की इच्छा होती है, वो उसके आहार संज्ञा है। भय संज्ञा किसको कहेंगे, संज्ञा इच्छा किसकी हो गई, उसको संज्ञा नहीं इच्छा, क्या भय की इच्छा होती है, नहीं, हाँ जो भय के कारण भागने की इच्छा होती है, भय उत्पन्न हुआ और उसकी भागने की इच्छा, छिपने की इच्छा, किसी से डरता है तो छिप जाने का विचार आता है, उसको भय संज्ञा कहा। एक है मैथुन संज्ञा, हाँ काम के परिणाम, अने परिग्रह संज्ञा, परिग्रह तब तक है जब तक वो तो राग द्वेष यानी जो कषाय का उदय है तब तक वो परिग्रह संज्ञा, यानी दसवें गुणस्थान में सूक्ष्म लोभ है भले वो अबुद्धि पूर्वक है तब तक उसको परिग्रह संज्ञा कहेंगे। आहार संज्ञा कब तक है, छठे तक है, क्योंकि वो तो वेदिनी की उदीर्णा छठे तक होती है, तो आहार संज्ञा भी छठे तक है। उसके बाद भय संज्ञा आठवें तक है, क्योंकि ये छह नौकषाय का उदय आठवें तक होता है, इसलिए भय भी आठवें तक है। मैथुन संज्ञा नवे के पहले बार, वो तो वो अबुद्धि पूर्वक में है, वो कर्म का उदय को देखकर संज्ञा कहने में आती है। जीव के परिणाम क्या, वो तो शुद्धात्मा में यानी शुद्धोपयोग में है वो, परंतु वहां वो कर्म का उदय केवल ज्ञान गम में तो है ही ना, कि कहाँ कौन से कर्म का उदय चल रहा है वो केवली तो जानते हैं, तो उस अनुसार वहां वो संज्ञा भी कहने में आती है। अब मैथुन संज्ञा के बारे में ऐसे ही ना, वो तो पंचम गुणस्थान से वो तो ब्रह्मचर्य पाल रहा है, परंतु यहाँ कैसी बात है कि वहां कर्म का उदय है वो बात बताई जाती है, वो नवे गुणस्थान के पहले भाग तक उसका उदय है, दूसरे भाग से उसका अनुदय है, उपशम श्रेणी में तो उपशमित है, शपक श्रेणी में उसका क्षय चालू हो जाता है।
देखो जैसा हमने देखा 13वें गुण स्थान में अनंत सुख उस जीव को प्राप्त है, फिर भी उसको कहते हैं कि वेदिनी कर्म का उदय है, वो भी अशुभ वेदिनी का है,
असाता
वेदिनी का। तो हमको लगता है अरे उनको क्या तकलीफ होती होगी, कुछ नहीं होती है, क्योंकि वो सिर्फ वहाँ कर्मों का उदय है और इतना डाइल्यूटेड स्थिति में वो उदय आता है कि नहीं के बराबर है। ऐसे कर्मों की अपेक्षा से उसका उदय कहाँ तक है, इस अपेक्षा से जीवों को भय 8वें गुण स्थान तक है ऐसा बताया।
तो ये चार संज्ञा हो गई, एवं चार भेदों ने लीधे संज्ञा चार प्रकारी छे, प्रशस्त राग अने अप्रशस्त राग, जिसको कहें प्रशस्त ने शुभ राग, अप्रशस्त ने अशुभ राग, एवं बे भेद ने लीधे राग बे प्रकार नो छे। ऊपर जो कालुष्य संज्ञा मोह राग उसके अर्थ चल रहे, किसको क्या कहना उसके बात अभी पहले समझा रहे, नहीं टोटली इन जनरल, क्योंकि ऊपर ऊपर मोह बताया ना, दर्शन मोह चारित्र मोह मोह करना चाहिए, इन जनरल बात होती है।
नहीं एक दफा आप कहते हैं कि ज्ञानी को कोई भी भय नहीं होता है,
ज्ञानी को दर्शन मोह के, देखो श्रद्धा की अपेक्षा बात अलग है और चारित्र की अपेक्षा बात अलग है। समय दर्शन होते ही सप्त भयों का जो नाश होता है कहो, या सप्त भय नहीं रहे, किस अपेक्षा से, श्रद्धा की अपेक्षा, क्योंकि अपने उसके अपना अनुभव कर लिया है। तो मैं तो जीव हूँ और वो भी स्वभाव में उसने मैं अपना स्थापित किया है, तो ये जो राग द्वेष से भिन्नता भासित हो रही है समझ, तो उसके तो मरण का भय या वेदना का भय ऐसा नहीं है। वेदना के काल में भले उसको थोड़ा दुख में परिणाम भी होगा और उसके लिए कुछ उपाय भी करेगा, कोई जो भयानक कोई प्राणी क्रूर सिंह वगैरह देख के भाग के भी खड़ा हो जाएगा, समय दृष्टि भी है, तो क्योंकि श्रद्धा की अपेक्षा उसका निर्णय बराबर है, उसकी श्रद्धा की अपेक्षा श्रद्धान है, उसमें कोई दोष नहीं है, परंतु अभी चारित्र में अभी तीन कषाय चुकड़ी है उसके, उसके उल्टे मुनिराज है और मुनिराज चल रहे है और सामने से वाघ सिंह आता है, तो अपना रास्ता नहीं बदलेंगे, वहाँ चारित्र की अपेक्षा से बिल्कुल दृढ़ता है उनकी। इस तरह से श्रद्धा और चारित्र की अपेक्षा भेद पड़े, यहाँ इन जनरल सब कुछ बता रहे हैं, क्योंकि दर्शन मोह और चारित्र मोह के भी भेद बताए ना, दो मुनिराज को कहाँ दर्शन मोह है, मोह किसको कहना उसकी बात हो रही है यहाँ पर। तब ये संज्ञा चार हो गए, राग में प्रशस्त प्रशस्त दोनों को राग बे प्रकार नोचे, क्योंकि मुनियों के लिए अप्रशस्त राग तो कहेंगे ही नहीं, तो छठे में तो प्रशस्त राग ही है उनके। असह्य जनों प्रत्यय अथवा असह्य पदार्थ समूह प्रत्यय वैरनो परिणाम दे द्वेष छे इत्यादि 119 पर अशुभ परिणाम प्रत्ययोनो परिहारज, ये सब अशुभ परिणाम क्या क्या है उसकी बात है, तो मुनिराजों को उसका परिहार है, उसका त्याग है, वो तो शुभ में विद्यमान है वर्तमान। तो इत्यादि अशुभ परिणाम प्रत्ययोनो परिहारज अर्थात अशुभ परिणाम रूप भाव पापाश्रवोनो त्यागज व्यवहार नयना अभिप्राय थी मनोगुप्ति छे, यानी अशुभ का परिहार यही मनोगुप्ति है। अब ये दो नंबर का फुटनोट नीचे पढ़ते हैं, प्रत्ययो यानी आश्रवो कारणों, इसको प्रत्यय कहते हैं, बंध के कारणों को प्रत्यय कहते हैं, उसको द्रव्य प्रत्यय भी कहेंगे, यानी पुराने कर्मों के उदय को द्रव्य प्रत्यय कहेंगे। भाव प्रत्यय ने जीवों के परिणाम जो है मोह राग द्वेष के, उसको भाव प्रत्यय कहेंगे। तो संसारना कारणों थी आत्मानु गोपन इतले रक्षण करूं ते गुप्ति छे, उसका रक्षण करना वो आता है ना अगुप्ति भय, यानी मेरा कोई रक्षण करता नहीं वो भय जो है वो अगुप्ति भय। और यहाँ क्या कहते हैं कि संसार के कारण कौन से, मोह राग द्वेष के परिणाम ये जो सब है, इतने हमने कालुष्य मोह संज्ञा राग द्वेष वगैरह वगैरह बताए, उससे आत्मानु रक्षण करो ने आत्मानु गोपन करवो ते गुप्ती छे, भाव पापाश्रवो तेमज भाव पुण्याश्रवो संसार ना कारणों छे, ये व्यवहार में तो अशुभ से बचने को यहाँ गुप्ती कहा है, परंतु सच में तो शुभ और अशुभ दोनों का परिहार करके अपने अशुद्धोपयोग में रहना वही गुप्ती होगी। तो उसको मन उसको गुप्ती कहना है तो उसमें मन गुप्ती वचन गुप्ती काय गुप्ती तीन नाम कैसे हो गए? एक शुद्धात्मा में ही ठहरना है तो उसके तीन नाम कैसे देंगे? तो ये तो जो शुभ भाव रूप मनोगुप्ती में आया है वो उस शुभ भाव का भी त्याग करके अंतरंग में चला जाएगा तो उसको कहेंगे वैसा, तो उस शुभ भाव को मनोगुप्ती कहने में आएगी बात। परंतु जहां स्थिरता नहीं है, निश्चय गुप्ती नहीं है, तो ये व्यवहार गुप्ती भी नहीं कहलाएगी वहां पर। अभी हम आगे बढ़ते हैं, टीका यहाँ पढ़ते हैं उसका प्रवचन। आ व्यवहार मनोगुप्तिना स्वरूप नु कथन छे। नीचे नोट, ये अभी हमने पढ़ी ने, व्यवहार चारित्र नो अधिकार छे ने, जेने अंतरमा आत्मदर्शन शुद्ध चैतन्य आनंद स्वरूप एनु जेने अंतरमा भान थई गयु छे, ए उपरांत स्वरूप मा जेनी स्थिरता। देखो इसका अंदर भान हुआ है, उसको तो अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव आया है, और प्रतीति जो कहने में आती वो अनुभव पूर्वक ही होती है। ऐसे हमने श्रद्धा कर ली आप कहते हैं या भगवान कहते हैं, उसको सम्यक दर्शन नहीं कहते। सम्यक दर्शन कब निश्चित हुआ? तो उसने अनुभव किया, वो अनुभव पूर्वक ही उसका श्रद्धान सही हुआ। और जो स्थिरता होती है ना, अनुभव तो हुआ है और अंतरंग में स्थिरता है, उसको कहेंगे चारित्र। देखो फिर ये वाक्य पढ़ते सेकंड लाइन, जेने अंतरमा आत्मदर्शन शुद्ध चैतन्य आनंद स्वरूप एनु जेने अंतरमा भान थई गयु छे, अनुभव हो गया है, ए उपरांत एनी इन एडिशन और क्या है, स्वरूप मा जेनी स्थिरता, चारित्रनी केटली स्थिरता थई छे, एने आवी मनोगुप्ती व्यवहारे होई शके छे। देखो मुनि क्या है, उनके तो अशुभ तो होते नहीं है, होते तो शुभ भाव में होते, नहीं तो अपने शुद्ध भाव में चले जाते। मनोगुप्तिनो विकल्प छे, मुनि ने मुनित्वोचित नोट मा मुनि नी व्याख्या छे। वास्तविक मुनिपनु केवु होए, एमा व्यवहार केवो होए, अंतर स्वरूप जेने आनंद स्वरूप नी प्राप्ति करी छे, सम्यक दर्शन मा आत्मा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप छे, एवी आत्मानी उपलब्धि एटले प्राप्ति करी छे, ए उपरांत स्वरूप मा शांति अने स्थिरतानी जागृति केटलीक थई छे, एने अशुभथी गोपवीने शुभभाव थाय, एने व्यवहार मनोगुप्ति कहे छे। आटली शर्तों सहित यानी अशुभति बचते हैं और शुभभाव में है, उन्हीं को मनोगुप्ति कहने में आता है, और वो भी व्यवहार से उपचार से। ए मुनि ने मुनित्वोचित एने लायक शुद्ध परिणति नी साथे वर्ततो, एटले के आत्मा पवित्र आनंद छे, एनी अवस्था परिणति शुद्ध तो थई छे, समय दर्शन मा पण आत्मा आनंद छे, एनी शुद्ध अवस्था थोड़ी थई छे, मुनि ने विशेष शुद्ध दशा थई छे, क्योंकि विशेष स्थिरता है तो विशेष शुद्ध दशा भी हो गई। आनंद ने शांति नी पवित्रता एने घणी परिणमी गई छे, एनी साथे वर्ततो एवी शुद्ध दशानी साथे रहतो, क्योंकि अभी पूर्ण वितरागता नहीं है तो दो धारा एक साथ चलेगी, वितराग धारा और सराग धारा। तो वितरागता के साथ साथ वहां कौन से जाति का राग है उसकी बात यहाँ हो रही है, इसलिए कहते साथे वर्ततो। हठ वगरनो मन आश्रित भाव, यानी उसको कहा शुभ उपयोग, वचन आश्रित के काय आश्रित शुभ उपयोग एटले राग, ये शुभ उपयोग छे, इन्हें व्यवहार गुप्ति कहेवामां आवे छे। लो व्यवहार गुप्ति वचन गुप्ति अने मन ने अशुभति गोप्यू छे अने शुभमां प्रवर्ते छे, कारण के शुभोपयोग में मन वचन के काय साथे अशुभोपयोग रूप जोड़ान नथी, इन्हें मन से भी काय से भी वचन से भी अशुभोपयोग में उनका जोड़ान नहीं, इन्हें अशुभोपयोग में आते नहीं है। एम एटले गुप्ती एम कहे छे, શુભરાગમાં અશુભરાગ નથી. શુદ્ધ પરિણતિ ન હોય ત્યાં આગળ આત્માની પવિત્રતા શ્રદ્ધા જ્ઞાન અને શાંતિરૂપ પરિણમન ન હોય. ક્યાં કહેતે હૈ જીસકો શુદ્ધ પરિણતિ વિતરાગતા ભી પ્રકટી નહીં હોય, સમય દર્શન હી જીસકો નહીં હુઆ હૈ, તો વહાં આત્મા કી પવિત્રતા જો કહેતે શ્રદ્ધા જ્ઞાન શાંતિરૂપ યાની સમય દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રરૂપ પરિણમન ન હોય એનો શુભોપયોગ જે હોય એ હઠ સહિત હોય છે. મિથ્યા દૃષ્ટિ જો કુછ શુભોપયોગ કર રહા હૈ ઉસકો કહીએ વો હઠ સહિત હો રહા હૈ. તે શુભોપયોગ વ્યવહાર ગુપ્તી પણ કહેવાતી નથી. શું કહ્યું તો વ્યવહાર નામ કિસકો હોગા જહાં નિશ્ચય હૈ. હા નિશ્ચય તો શુદ્ધ પરિણતિ હૈ, ઉસકે સાથ જો શુભરાગ હૈ ઉસકો વ્યવહાર સે કહેને મેં આતા હૈ, ઉસકો વ્યવહાર ગુપ્તી કહેંગે. શું કહ્યું કે વ્યવહાર ગુપ્તી એને કહેવાય કે જેને આત્માનો આનંદ અને જ્ઞાન અને પવિત્રતાની પ્રભુતા શ્રદ્ધા જ્ઞાન અને શાંતિમાં પરિણમી છે અને સમય દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રરૂપ જહાં પરિણમન હૈ ઉસકો વહાં ઉસકે જો શુભરાગ હૈ ઉસકો યહાં પર વ્યવહાર ગુપ્તી કહેંગે. મુનિ યોગી કી બાત ચલ રહી, યે ગુપ્તી તો ચોથે પાછો વાલે કો ગુપ્તી નહીં કહેંગે, ઉતની અધિક સ્થિરતા હૈ ઉનકો કહેંગે. સ્વભાવને આશ્રય વિતરાગી પરિણતિ વિતરાગી અવસ્થા થઈ છે એને હઠવૈનાનો અશુભથી ગોપનરૂપ એને અશુભથી બચનેરૂપ મનનો શુભભાવ એને વ્યવહાર ગુપ્તી કહેવામાં આવે છે, એને મનગુપ્તિ વ્યવહાર છે મનગુપ્તિ. પણ જેને શુદ્ધ પરિણતિનો અનુભવ જ નથી, આત્મા આનંદની શુદ્ધ પરિણતિ જેને પ્રકટ થઈ નથી, એવા અજ્ઞાનીના શુભભાવને હઠવાળો એ તો શુભભાવ છે એને એથી એને વ્યવહાર ગુપ્તી પણ કહેવામાં આવતી નથી. ઉસકો ગુપ્તી નહીં કહેંગે, વ્યવહાર ગુપ્તી ભી નહીં કહેંગે. કોઈ કહેંગે ગુપ્તી મત કહો વ્યવહાર સે તો કહો તો કહેતે વ્યવહાર સે ભી ઉસકો નહીં કહેંગે. ભારે શરતો આવો માર્ગ છે ભાઈ, એને શું માર્ગ છે એવું જાણવું એને તો પડશે ને, કેમ કે આત્માનું સમય દર્શન આત્મજ્ઞાન અને એનું ચારિત્ર એ મુક્તિનું કારણ છે. દેખો હમે મુક્તિ ચાહીએ તો ઉસકે માર્ગ કો ભી પહેચાનના પડેગા, પૂરા માર્ગ ખ્યાલ મેં આયેગા તો હી માર્ગ પ્રગટેગા. એસા નહીં કે અભી તો ચોથા પાછા પ્રાપ્ત કરેંગે જબ મુનિ હોના હૈ તો મુનિ કી બાત દેખેંગે, એસા નહીં હૈ. અભી પૂરા માર્ગ ખ્યાલ મેં આયેગા ચૌથે ગુણસ્થાન સે ચૌદવે ગુણસ્થાન તક ઓર સિદ્ધ દશા સબકી અંતર બાહ્ય દશા બિલકુલ નિશંક જીસકો કહેંગે ઉસ સંબંધી જ્ઞાન ઓર શ્રદ્ધાન હોગા તો હી વો માર્ગ પ્રકટ હોગા, ઉસકે બિના સમ્ય દર્શન ભી નહીં હોગા. સ્વરૂપમાં રમણતા આનંદમાં રમણતા ચરવું રમવું જમવું આનંદનો અનુભવ કરવો એવું જે ચારિત્ર હોય છે એને સાચું ચારિત્રને મુક્તિનું કારણ કહે છે. બાકી લૌકિકમાં તો બાહ્ય ઉનકે આચાર વિચાર દેખ કે યે ચારિત્ર હૈ વો ચારિત્ર હા વો કુછ ભી પરદી દે દેતે હૈ ઉસમે. એવી ચારિત્ર દશામાં એની જો વિતરાગી દશા હૈ અંતરંગ મેં સ્થિરતારૂપ ચારિત્ર દશા હૈ શુદ્ધોપયોગરૂપ પરિણમન જ્યારે ન હોય. ક્યાં કહેના ચાહતે હૈ ઇતની તીન કષાય ચોકડી કે અભાવપૂર્વક વિતરાગતા પ્રકટ હુઈ હૈ. કભી કભી શુદ્ધોપયોગ મેં હૈ સાતવે ગુણસ્થાન મેં, કભી કભી શુભ મેં છઠે મેં આતે હૈ. ઇસલિયે ક્યાં કહા શુદ્ધ એવી ચારિત્ર દશામાં દેખો વિતરાગી પરિણતિ વહી ચારિત્ર દશા હૈ ઉસમેં જબ શુદ્ધોપયોગ રૂપ પરિણમન જ્યારે ન હોય પરંતુ પરિણતિ તો ચાલી રહી ત્યારે એને આવું અશુભથી ગોપનરૂપ શુભના ભાવરૂપ શુભોપયોગરૂપ મન વ્યવહારે ગુપ્તી કહેવાય છે. ચેતનનો અરૂપી મધુર જેનો આનંદ સ્વાદ છે આવે છે ને એ નીચે નોટની વ્યાખ્યા થઈ. એ નોટ કી ઇસને ઇતની બાત બતાઈ અને યહાં ક્યાં કહેતે વ્યવહારે મનગુપ્તિ કહેવાય છે એમ ચાલશે. या शुभोपयोग रूप मन ऐसा लेना है, वो मन मन के द्वारा उपयोग चल रहा है, शुभोपयोग रूप मन व्यवहार एक गुप्ती कहते हैं। हाँ हाँ, अब आगे हवे क्रोध मान माया ने लोभ नामना, ये कालुष्य की बात बता रहे हैं, यानी अशुभ से परिहार होना है, अशुभ का परिहार, तो अशुभ में किस किस को लेना उसकी बात चल रही है, यानी चार कषायों को लेंगे, मोह को लेंगे, संज्ञा को लेंगे, वो सब हम पढ़ के आए अभी। तो क्रोध मान माया ने लोभ नामना चार कषाय ती क्षुब्ध थैलु चित्त ते कलुषता छे। देखो हम जो क्षुब्धि होते, क्षोभित होते, दुखी होते हैं, आकुलित होते हैं, वो क्रोध मान माया लोभ अपने ही कषायों के कारण होते हैं, यानी हमारा ही मोह रहा द्वेष के कारण हम दुखी है, और दुख का इलाज कहाँ कर रहे हैं, संयोगों में, कि संयोग कुछ पलट जावे तो मैं थोड़ा निराश हो जाऊंगा, सुखी हो जाऊंगा, ऐसा मान्यता पड़ी है ना, और पूरे हमारे विकल्प भी उसी के बारे में चलते हैं ना, ये नहीं ये करना है, वो करना है, वो करना, क्यों, कि थोड़ा हमें राहत मिल जाए, हमारा थोड़ा दुख कम हो जाए। ये पहला कलुषतानी व्याख्या चे मलिन परिणाम क्रोध मान कपट अने लोभ माया ने कपट ए चार कषाय थी कंपायमान अस्थिर थेली क्षुब्धता एवं चित्त एने कलुषता कहे चे। देखो कषाय से परिणामों की चंचलता होती है, हमने देखा था, और योग से प्रदेशों की चंचलता होती है, और इनसे तो बंध होता है, क्योंकि योग के कारण प्रदेश प्रकृति का बंध होता है, और कषाय के कारण स्थिति और अनुयोग भाग का बंध होता है। तो कहते हैं कलुषता जो है मलिन परिणाम है, उसको कालुष्य कलुषता कहा। व्याख्या करे छे ए कलुषता तो अशुभ भाव छे एने छोड़वो, ये छोड़वो वाली वो उपदेश की भाषा होती है। समय दर्शन समय ज्ञान अने सम्यक चारित्रना केटलाक भाव सहित आवा कलुष भाव ने मन में छोड़वा अने शुभ भाव नु थवू एने मननी व्यवहार गुप्ति कहेवामां आवे छे। ऊपर आया था ना मन व्यवहार गुप्ति कहेवाय छे। पछी दर्शन मोह ने चारित्र मोह एवा बे भेदों ने लीधे मोह बे प्रकारे छे। आम जो तो चारित्रना भाग में कोई पण राग नथी एम कहूं, दर्शन मोह ने चारित्र मोह बे एमां आवी गया, शुभ ने अशुभ राग बन्ने में आवी जाए छे, पण एनी व्याख्या लेवी, अने चारित्र मोहता राग शुभ पण आवी जाए अने अशुभ पण आवी जाए, पण ए बेनी निवृत्ति तो निश्चय मनोगुप्ति थई। समझ में आते हैं बा, शुभ अशुभ दोनों से निवृत्ति होना तो निश्चय मनोगुप्ति, जो अंतरंग में स्थिरता है, पण एमांथी अशुभ नो त्याग लेवो, यानी यहाँ भले वो राग कहने से सभी उसमें इंक्लूडेड है शुभ अशुभ, परंतु अशुभ के परिहार में उसमें से अशुभ अशुभ की बात हमें सोचना चाहिए, समझना चाहिए। शैली तो ये बधी छे, राग दोषादि अशुभ भावन एटले टीका पण एवी जातनी करी छे, एमांथी अशुभ भाव एम नथी, ए अशुभ भावन एम छे, एवा जे अशुभ भाव एने छोड़वा, छोड़वू ने ए बधो व्यवहार छे ने। अब संज्ञा की बात करेंगे, आहार संज्ञा भय संज्ञा मैथुन संज्ञा ने परिग्रह संज्ञा एवा चार भेदों ने, ए तो अशुभ भाव छे, ए तो ए चार तो अशुभ भाव छे, चारित्र मोह मां तो अजी शुभराग पण आवी जाए, जब पहले मोह की बात की दर्शन मोह चारित्र मोह, तो चारित्र मोह कहने से शुभ अशुभ दोनों आए थे, संज्ञा कहने से तो सब अशुभ ही आ गए इसके, पण एमांथी अशुभ राग ने छोड़वो अने शुभ राग में रहेवू एने अहीं व्यवहार मनोगुप्ति कहे छे। रहेवू एटले छे एम, एने उसको शुभ राग है बस इतना ही। एक कोर सम्यक दृष्टि शुभ शुभ राग थी मुक्त छे, हाँ आत्मा ज्ञानानंद छे एवू भान थता, भान थता ने उसका अनुभव हो गया उसको। समय दृष्टि शुभ अशुभ विकल्प थी तो भिन्न ज छे, क्योंकि जब आत्मा का अनुभव आया तो उसमें वो राग द्वेष का अनुभव आया क्या, अनंत गुणांक अभेद ऐसा अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव लिया, तो उसमें राग रहित ऐसे आत्मा का अनुभव लिया, तो उसमें तो जान ही लिया प्रत्यक्ष कि इसमें राग द्वेष है ही नहीं है, इसलिए वहां राग द्वेष से छुट्टा पड़ गया वो, क्योंकि मैं उससे जुदा हूं ऐसा अनुभव पूर्वक उसने जान लिया है। यहाँ लिखा ना सम्य दृष्टि शुभ अशुभ विकल्प थी तो भिन्न छे, उसके शुभ अशुभ विकल्प नहीं ऐसा नहीं कहा, विकल्प है उससे वो जुदा है, विकल्प के रहते हुए उससे जुदाई का भान होना चाहिए। पर नहीं, चारित्रनी अपेक्षाएं अस्थिरतानो जे भाव एना बे भाग शुभनी अने अशुभनी, ये अशुभनी अस्थिरता छोड़ी ने शुभमा होई छे, ये तो व्यवहार की बात अभी हो रही नहीं, इसलिए ज्ञान करे छे के आ भाव छे, यानी बस उसके ज्ञान में कि अभी ये शुभ भाव आ रहा है, शुभ भाव करे छे के करना चाहिए वो बात है ही नहीं। व्यवहार जाने लो प्रयोजनवान छे ने, प्रयोजन क्या है बस उसका, वो उसका ज्ञान हो रहा है, पर्याय में है बस इसको जान रहे है, एने अहिया व्यवहारे मनोगुप्ति कहेवामां आवे छे। आहार संज्ञा, आहार करवानो विकल्प छे संज्ञा नथी, आहार करवानो विकल्प छे संज्ञा नथी, आ तो अशुभ भाव छे। मुनि ने तो आहार लेवानी वृत्ति होय छे, आम तो शास्त्र ना पाड़े के अशुभ भाव तो एने होय ज नहीं, एटले आहार संज्ञा ए तो वृद्धि बतावे छे, ए वृद्धि एने होती नथी, आहार लेवानो भाव ए आहार संज्ञा छे एम नथी। क्या कहा? आहार के प्रति वो तीव्र जो आसक्ति के भाव वहां उसको संज्ञा कहा, फिर भी कर्म की उदीर्णा उदय की अपेक्षा से वहां पर उदीर्णा ही लेना, उदय भी नहीं लेना, छठे गुणस्थान में आहार संज्ञा बताई जाती है, परंतु जैसे पहले गुणस्थान वाले को होगी वृद्धि, ऐसी वाली बात वहां नहीं समझना, यानी उनके भी होती है परंतु वो तो अप्रशस्त राग में नहीं गिनाई जाएंगे। मुनि का जो आहार लेने के लिए निकलते भी है उसका विकल्प आता है, वो भी शुभ भाव में लिया जाता है उनका। प्रशस्त राग अने अप्रशस्त राग, अभी राग की बात करें, एवा भे भेद ने लीधे राग बे प्रकार नो छे, एक शुभ राग अने एक अशुभ राग, एमाथी अशुभ राग ने छोड़वो अने शुभ राग मा व्यवहार कहवाय, एने मनोगुप्ति कहेवामां आवे छे। अहीं तो एम कहे छे इत्यादि बधाने छोड़वू ए बधा अशुभ परिणाम छे, ध्वनि तो ई छे। मोक्ष ने कुछ कहा बीच में, देखते देखते उत्तर में कहते एम गोटा न चले, ऐसे घोटाले नहीं में चले गए, अहीं तो पाठ तो चोखो छोड़वू एम कहे छे, एनो अर्थ आटलो करवो, अशुभ छोड़वू अने शुभमां होय एटली वात, बस वात होय एम आवे ने, आड़ी अवड़ी कहीं थाय पाठ एवो छे ने जो ने, एमां एम क्या लीधू कि राग दोषाय अशुभ भावानम एम शब्द छे ने, चोखो पाठ छे, पण एमांथी आम लेवू, एमां जे अशुभ भाव छे एने छोड़वो एटली वात, पाठ पाछो व्यवहार छे ने, पाठ पाछो व्यवहार नये अने व्यवहार नयनम परिकहियम एम, अर्थ के अशुभ ने छोड़ता शुभ रहे छे, एने व्यवहारे मनोगुप्ति छे। कितना क्लियर बता रहे, बारंबार वही बात बता रहे है ना, अशुभ का त्याग है वहां पर और शुभ रह जाता है, उसको मनोगुप्ति कहने में आती है। इमा कहीं बीजू आड़ू आड़ू चाले वो नथी, समझानु कहीं ए राग ना बे प्रकार पाड़िया एटलू अहिया ले उसको जो ही है, पण ए बन्ने छोड़िया छे, बन्ने छोड़े तो निश्चय मनोगुप्ति थी जाए। अहीं पाठ व्यवहार नयनो छे, एमां जे बंध बेसतु होय एनो अर्थ थवो जोईए ने।
परिकहियम जो है उसमें गीर रसमय गाथा में दिया है, या
कहां ऊपर
ऊपर व्यवहार नयन,
व्यवहार नयन परिकहियम, हाँ ही रसो चाहिए। बड़ा है ना पैराग्राफ, अभी यहीं रुकते हैं, द्वेष की बात कल करेंगे। जावानी के ध्यान ते सूजे लो कालो, सोवानी मन मस्तकनम सदादित
नमो सीताणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं।